हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयति ते दिखम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही। क्या कहते हैं गोपियाँ वृंदावन के बारे में? गोपियाँ कहती हैं, क्योंकि हे कृष्ण, आपने ब्रज वृंदावन को जन्म लेकर बहुत गौरवशाली बनाया है। जयति ते अधिकम, यानी आपने वृंदावन को अधिक जयति यानी गौरवशाली बनाया है, इसलिए लक्ष्मी देवी ने अभी यही निवास किया है। श्रयत इंदिरा शश्व दत्र ही, मतलब शाश्वत रूप से लक्ष्मी यही निवास करती है। लक्ष्मी को ऐसा कुछ काम नहीं वृंदावन में, क्योंकि लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य, और वृंदावन तो ऐश्वर्य का धाम है ही नहीं, लेकिन फिर भी सेविका के रूप में लक्ष्मी हमेशा वहाँ पर उपस्थित रहती है। आपको सुनकर बड़ा आनंद होगा, जब ये वसुदेव जी जा रहे थे ना कृष्ण को लेकर, जन्म होने के बाद लेके जा रहे हैं ना उनको, तो ऐसे शास्त्र में लिखा है कि वसुदेव के पहले ही कृष्ण भगवान ने लक्ष्मी को वहाँ भेजा, बोला मेरा जन्मोत्सव अभी मनाने जा रहे हैं सब लोग, मैं अभी जन्म लेकर वहाँ पहुँच रहा हूँ, और नंद बाबा को भी मैं वहाँ प्रकट हो जाऊँगा, और कल सब लोग पता चलेगा सबको कि मेरा जन्म होने वाला है, हो गया। तो वो जन्म उत्सव होगा मेरा नंदगांव में, गोकुल में, तो उस समय लक्ष्मी जी वहाँ जाना, कुछ कमी नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि वसुदेव के पहले लक्ष्मी वहाँ से निकली जमुना जी को पार करते हुए, और बहुत सुंदर कहानी है, अभी क्या बताऊँ। वो जो रात को ना कमल कभी खिलते हैं बताओ आप? यस माता जी, कमल कभी खिलते हैं? हाँ रात में खिलते हैं, आपके घर में रात में खिलते हैं कमल? वाह, मैं आऊँगा देखने के लिए। रात में कुमुद नाम के फूल खिलते हैं, तो चंद्रमा को देखकर कुमुद खिलते हैं, और सूर्य को देखकर कमल खिलते हैं, और सूर्य जाते ही कमल बंद हो जाते हैं, देखो आप कभी भी। इसलिए भंवरा जो कमल के अंदर मधु लेने में व्यस्त हो गया है ना, अगर वो बाहर निकला नहीं तो रात भर बंद रहता है वो। ऐसे कितनी कविताएं हैं, बहुत सारी बचपन में कविता सुनी हमने, कि जो मधु लेने में मग्न हो गया, सूर्यास्त तक मधु ही खाता रहा, तो जब सूर्यास्त के बाद कमल बंद हो गया तो रात भर कैद रहा वो। ऐसे बहुत सारी कविताएं इस पर लिखी गई है कविताओं ने, कवि ने। तो जब कृष्ण का जन्म हुआ ना मथुरा में, मतलब यहाँ बैठो ना आप, इधर मेरे को उधर देखना पड़ता है, इधर देखना पड़ता है, इधर बैठो ना, आपके फर्स्ट क्लास इधर बैठा है, आराम से बैठिए। ये सब इसको बंद कर सकते हैं आप, एसी, यू कैन क्लोज दिस एसी, नो प्रॉब्लम इफ़ दे आर गेटिंग इरिटेटेड। हाँ तो या तो आप लोग उधर कुर्सी में बैठ जाओ, तो मैं इधर ही देखता हूँ, फिर अच्छा रहेगा। तो जब जब वसुदेव निकले, उसके पहले लक्ष्मी देवी निकली है, और जमुना जी में सारे कमल रात को खिल गए। उसके कई कारण हैं, एक कारण तो ये है कि जो, हाँ आ जाइए ये, कम ऑन दिस साइड, कम ऑन, यस यस गुड। तो रात को चंद्रमा था ना, अष्टमी का था, जन्म कभी हुआ अष्टमी के दिन रात को, तो आधा चंद्र था, लेकिन चंद्र क्या सोच रहे हैं चंद्र देवता, कि दो वंश हैं भगवान के, हमने पृथ्वी पर दो वंश हैं, एक चंद्र वंश है, एक सूर्य वंश, और तीसरा वंश नहीं है, राम, प्रभु रामचंद्र, राधा रानी, रघु राजा, हाँ श्राद्ध देव मनु, ये सब सूर्य वंश के हैं सब लोग, पूरा भागवत में दिया है नवम स्कंद में। और कृष्ण भगवान जो है वो चंद्रवंश में है। तो चंद्र देवता क्या सोच रहे हैं, अरे मेरे वंश में भगवान जन्म ले रहे हैं, मेरे वंश में भगवान जन्म ले रहे हैं, तो मैं आधा क्यों रहूं, आज तो सेलिब्रेशन का दिन है जो पूरा होना चाहिए, तो आधा दिन का, आधा चंद्रमा था वो उस दिन पूरा हो गया। द ओनली टाइम इन द होल क्रिएशन प्रकृति का नियम चंद्र ने तोड़ दिया अपने अधिकार में, और प्रभु के स्वागत के लिए आधा चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा हो गया, तो प्रकाश बढ़ गया ना, तो कमलों को लगा कि अरे सूर्य उदय हो गया, तो कमल खिल गए, एक कारण है। दूसरा कारण है कि उन्होंने इस रात को लक्ष्मी देवी को जमुना जी के ऊपर से जाते हुए देखा। लक्ष्मी देवी कौन है? कमल ही नहीं, उनके हाथ में भी कमल रहता है और वो कमल में भी खड़ी रहती है ना, कमल में बीच में खड़ी रहती है वो, उसका नाम कमलिनी है। तो ये कमलिनी जो है वो हाथ में कमल लेकर जब जा रही है तो अपनी स्वामिनी को वंदन करने के लिए सब कमल खिल गए, ऐसा वर्णन दिया गया है। उसे बहुत सारे वर्णन दिए गए। तो ये लक्ष्मी देवी को कृष्ण भगवान ने भेजा था कि मेरे पहले जाओ और पूरा ऐसा ऐश्वर्य वहाँ पर फैला दो कि मेरे जन्मोत्सव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो लक्ष्मी देवी तब से निवास कर रही है वृंदावन धाम में। उनका अस्तित्व कैसा है, प्रकट नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्य वहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रकट नहीं होता है, लेकिन सब ऐश्वर्य है, जरूरत पड़ने पर सब कुछ है। जैसे भी देखो कैसे ऐश्वर्य है, नंद बाबा के घर पे 9 लाख गाय हैं, और आप वर्णन पढ़ेंगे ना तो नंद बाबा ने तो लाखों गाय बांटी वो दिन, फिर भी 9 लाख गाय कम नहीं हुई, हर एक ब्राह्मण को गाय बांटी। और कभी भी ऐसा कल्चर नहीं था कि एक ब्राह्मण को एक ही गाय देना है, वो किसी को 108 किसी को 51 ऐसे देते थे पूरे दिल खोल के। और ऊपर से 85 साल की उम्र में बालक का जन्म हुआ है, इतनी खुशी है कि नंद बाबा तो पूरा भंडार खोल के सब बांट रहे हैं, कम्प्लीटली बांट रहे हैं, हाथी बांट रहे हैं, घोड़ा बांट रहे हैं, बैल बांट रहे हैं, गाय बांट रहे हैं, फिर भी किधर संख्या कम नहीं हुई। और वैसे तो आप भागवत पढ़िए आपको पता चलेगा, पुतना आई पुतना को मारा तो यशोदा मैंने तुरंत सबको बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और सबको दान कर दिया। क्या दान करना, मतलब मेन थिंग गाय, उसके बाद वस्त्र है धन है सब उसके बाद में। नंद बाबा ने 7 पर्वत बनाए धान्य के, 7 हिल्स ऑफ ग्रेन्स, खुद पर्वत बनाए इकट्ठा करके, और उसके टॉप पर सब ज्वेल्स लगाए, 7 प्रकार के ज्वेल्स उसका टॉप बनाया, शिखर पर्वत का, और वो 7 शिखर अन्न धान्य जो है सबको बांटा उन्होंने। और भी मजेदार कहानी है लक्ष्मी के होने का, क्या प्रूफ है उसके अंदर, इतना सब देने पर भी वहां पर कुछ कम नहीं हुआ। और सब लोग अपने घर से माखन मिश्री दही दूध लेकर आए, रोली, हाँ मतलब रोली मतलब क्या, चंदन, सॉरी कुमकुम, रोली चंदन सब वो स्वागत की वस्तु होती है, रोली यानी कुमकुम, चंदन यानी चंदन, और अक्षत, फिर हल्दी, फिर बहुत सारे जड़ी बूटियाँ लेकर आए नज़र उतारने के लिए। और सब लोग अपने अपने घर में जितने माखन के गोले थे ना, वो हमारे गांव में भी अभी भी वो रिवाज है, माखन के गोले बना कर रखते हैं, फिर वो फ्रिज में या तो बर्फ़ में रखते हैं, फिर गोले 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 रहते हैं। बरसाने में कभी जाएंगे ना आप ठंडी के मौसम में, तो वहाँ पर गौशाला में लंच खाएंगे ना तो माखन का गोला भी लंच हाथ में देते हैं एक बिग वन लाइक दिस। हाँ अरे ब्रज का लाइफ बहुत सुंदर लाइफ है, और प्रचुर मात्रा में सबको एक एक बड़ा लड्डू दिया जा रहा है मक्खन का। ठंड का मौसम है दिसंबर का, तो वैसे भी माखन ऐसा फ्रोजन रहता है। तो वो सारे लेकर आए और आके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। अरे आप बोले 100 ग्राम गए, अरे 50 ग्राम गए, ऐसा बोले क्योंकि हम लोग यहाँ पर गिनते हैं ना वो कितना महंगा है, अरे वो मिलता तो नहीं है, प्योर है एकदम, ऊपर से फेंक रहे हैं तो नीचे गिर गया, अरे 50 ग्राम और गिर गया, 100 वाला गिर गया, 1 किलो गिर गया, 5 किलो घी वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। इतना फेंकता आदमी कभी है जो प्रचुर मात्रा में होता है तो अभी परवाह नहीं करता है उसकी। हम लोग क्या करते हैं, फूल नहीं फेंकते हैं, तो फूल की पंखुड़ी बना के फिर फेंकते हैं उसको, क्योंकि फूल फेंकेंगे तो ज़्यादा फूल खत्म हो जाएंगे ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं वो पकौड़ी निकाल के गोंडा बिंडा सब मिक्स करके फिर फेंकते हैं हम लोग। ये ऐश्वर्य का लक्षण नहीं है, ये कैलकुलेटेड दारिद्र का लक्षण है। क्या करें, अभी कलयुग में ऐसा वेल्थ है ही नहीं किसके पास जो चंपा के फूल के पंखुड़ियाँ दूसरे पर उधेड़ रही हैं। लेकिन भगवान के जन्म के समय तो सुगंधी फूल मक्खन सब इतने उधड़े, उन्होंने इतने उधड़े, आते आते रास्ते में भी उधड़ रहे थे, इतने फूल पहनकर सब गोपियाँ आई थी और सब लोग ना भाग रही थी नंद भवन की तरफ। तो समझे आपने बहुत सारे फूल सर पे लगाए, बहुत सारे, और आप भाग रहे हैं तो कुछ फूल तो निकलेंगे गिरेंगे ना। तो कहते हैं नंद भवन के ओर जाने वाले सभी रास्ते है ना फूल से भरे हुए थे, वो भी सुगंधित फूल सब, कुछ सर पे है कुछ नीचे गिर गया कुछ और भी गिरते जा रहे हैं, और किसी को उसकी परवाह नहीं है, भाग रहे नंदलाला के दर्शन करने के लिए। फिर सबके ने सबने बधाई दी और सब नंद भवन के आंगन में आए। जैसे हम लोग अभी जाते हैं नंद भवन में तो वो पूरा पटांगण है ना, पूरा पूरा ग्राउंड दिखा आपने, वो टाइल लगा करके व्हाइट एंड ब्लैक, वो पूरा यू कैन इमेजिन को आंगन है नंद भवन का। तो वहाँ पर आज भी बहुत मोरियाँ हैं, मोरी मतलब ड्रेनेज का पॉइंट्स है, बारिश गिरेगा तो उस पर से नीचे आता है। तो उन्होंने ना वो आंगन में जन्मदिन के उपलक्ष्य में जन्मदिन को मनाने के लिए उन्होंने इतने माखन के गोले फेंके एक दूसरे के ऊपर, फिर दही भी फेंका, फिर दूध भी फेंका। तो कहते हैं आज आप इमेजिन कीजिए, मैं खाली वही इमेजिन करता हूँ कि तभी तो इतना इतना सा महल नहीं था, नंद भवन बहुत विशाल था, ह्यूज। अभी तो उसकी प्रतिकृति के रूप में एक मंदिर बना के रखा है। वो भी अगर समझो यहां तक भर गया दूध से, तो कितना दूध लगेगा उसको भरने के लिए, क्योंकि तो वो गोले ना वो सब ड्रेनेज में जाके अटक गए मोरी में, और दूध दही जो फेंका है वो जाना बंद हो गया, तो सब जमा हो गया उधर, और सबके कमर तक दूध दही का मिश्रण है। नंद बाबा भी उस पे खड़े हैं। इतना दही और दूध फेंकने के बाद भी कोई कमी नहीं हुई। अगले बार नंद बाबा पूछ रहे, दूध दो मैया, यशोदा दूध कहाँ है? तो दूध नहीं, कल खप फेंक दिया ना, खत्म हो गया। ऐसा कभी आता नहीं वर्णन कभी किधर भी। यह ऐश्वर्य लक्ष्मी का होना, लक्ष्मी का सूक्ष्म रूप में होने का प्रूफ है ये। आगे सुनो, अब सब लोग कमर तक पानी में, अपना दूध में दही में मिक्सचर में खड़े हैं, सब बॉल्स जाके उधर अटके अटक के रखा हुआ है। तो सब लोगों को क्या लगा, अच्छा क्षीर सागर बना हुआ है, क्षीर सागर रेडी हो गया। तो कह रहे नंद बाबा आपको अभी डांस करना पड़ेगा, आपके बाप को बालक हो गया है, अभी पुत्र पुत्रवान हो गए आप, डांस करो। बोले मैं बूढ़ो कहाँ नाचूंगा, मैं कैसे नाचूंगा? बोले हम आपको नचाएंगे। तो सब अपना फेटा निकाला, ऐसे ही फेटा निकाल दिया, जोड़ दिया, लंबा कर दिया उसको, और एक गोल आकार उसके पेट के ऊपर घुमा दिया, एक एंड इधर दिया, एक एंड इधर दिया, और क्या किया, वो खींचना शुरू किया, तो वो गोल 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 ऐसे हिलने लगे। तो ऐसे आचार्य लिखते हैं कि समुद्र मंथन, क्षीर सागर का मंथन का दृश्य वहां निर्माण हुआ। नंद बाबा मेरु पर्वत जैसे बीच में खड़े हैं और उनका मंथन किया जा रहा है, और दोनों तरफ से खींचा जा रहा है उनको, और नंद बाबा जो है बड़े आनंद से अपने आप नच रहे हैं ना, वो खुद नहीं नाच नहीं रहे, उनको नचाया जा रहा है। ऐसा है ऐश्वर्य, कभी कुछ कमी नहीं हुई। अरे और एक ऐश्वर्य का प्रमाण देखो नंदगांव का। यशोदा माई है ना, उनके नंदगांव में और नंद भवन के अंदर भी ऐसे मटके थे कि जिसमें मेरे जैसा आदमी खड़ा रह सकता है, आज भी है, लेकिन एक आध दो ही बच्चे हैं, वो बचा के रखे कमरा बनाकर उसको, तो वो भी जाते थे जमीन के अंदर मट्टी के मड़के, और मैं खड़ा रहूंगा तो मेरे ऊपर भी जगह है, और उसमें मंथन करते थे वो। तो उसमें मंथन करने के बाद में मक्खन निकलता था, तो मक्खन कृष्ण के लिए इकट्ठा करके रखते थे सब, और बचता क्या था, छाछ। तो कहते यशोदा मैया बड़े ही प्रेम से गोपियों को छाछ पिलाती थी नंद भवन में, और छाछ पिलाते समय समझो आपको पास कुछ पात्र है, आप कुछ मिट्टी का पात्र है, कुछ मेटल का पात्र है, आप दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि धीरे 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 धड़ाधड़ा देते थे, तो उसमें जितना गिरता था ना देते समय, जितना छाछ गिरता था वो गिरता था, और नंदीश्वर पर्वत से वो गिरकर नीचे आकर उसका एक कुंड बना था जिसका नाम है छाछ कुंड। कैन यू इमेजिन कितना छाछ दिया होगा और कितना गिरा होगा वो कुंड बनने के लिए, उस कुंड से भी नीचे से लोग पीते थे छाछ। ये ऐश्वर्य का चिन्ह है। आज भी हमारे गांव में, हमारे भी वही बच्चों को बता रहा था मैं अभी GSC में, कि हमारा कितना श्रेष्ठ कल्चर है। आज भी हमारे रियल देहात में, हाँ अभी वो क्या कहते हैं उसको, करप्टेड देहात की बात नहीं कर रहा हूँ जो खराब हो चुके हैं, रियल देहात में आज भी जाएंगे ना तो कितना भी आदमी गरीब रहेगा तो छाछ नहीं बेचेगा वो, क्योंकि छाछ बेचने को लगना मतलब वो स्थिति आना कि छाछ बेचना पड़ रहा है, मतलब दारिद्र्य उत्तम हो गया वो, पूरा कंप्लीट दारिद्र्य हो गया वो। इसलिए कितना भी गरीब आदमी होगा ना वो छाछ नहीं बेचेगा कभी, दूध बेचेगा, दही बेचेगा, माखन बेचेगा, घी बेचेगा, लेकिन छाछ फ्री में बांटेगा। और उस जमाने की बात करो, सब छाछ जो है वो गोपियों को फ्री में बांटती थी राधा रानी, अपने यशोदा मई, कीर्ति मई, यशोदा मई, सारी गोपियाँ। हम लोग एक बार ना उधर गए थे, क्या नाम उसका, सूर्य कुंड, आप लोग गए सूर्य कुंड, राधा कुंड के पास में है सूर्य कुंड, जहाँ पर राधा रानी सूर्य की पूजा करने को जाती थी रविवार के दिन, और वहाँ पर कृष्ण उनको चुप चुप के मिलने को आते थे अलग अलग भेष बनाकर। तो सूर्य कुंड पे महाराज जी यात्रा लेकर गए थे, अभी तो जाते नहीं, पुराने जमाने जाते थे, जगह जगह जाकर वहाँ क्लास देते थे, तो विशाल सूर्यकुंड के पास बैठकर कास दे रहे थे, और 2000 डिवोटी उस समय थे, अभी तो 7-8 हज़ार लोग यात्रा में जाते हैं, उस समय 2500 डिवोटीज थे और जगह जगह पकड़ के बैठे थे, और सबके पास FM वगैरह कान में डालकर। देखिए वैभव किसको कहते हैं, वैभव ना धन में नहीं होता है, वैभव भाव में होता है, अंदर वैभव होना चाहिए तो आदमी दे सकता है। भंडार में बहुत धन बैठा हुआ है लेकिन देने की प्रवृत्ति नहीं है तो वैभव के फायदा क्या है, वो तो सबसे दरिद्र आदमी है जो दे नहीं सकता किसी को। तो मैंने वो कान में लगाया था, मैं यात्रा का ऑर्गेनाइजर था, लेकिन कथा चालू हुई मतलब मैं फ्री हो गया, तो मैंने कान में लगा कथा सुनते सुनते FM पे मैं एक घर के छत में चढ़ गया, अपने आप ऐसे ढूंढे ढूंढे गया, तो घर के छत पे एक मैया मट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही थी, तो मैं देखते ही क्या बोली, आ जाओ प्रभु जी बैठो रोटी पालो गरम गरम। बोला ठीक है भूख भी लग रही है पा सकते हैं। तो एक गरम रोटी हाथ की आधी ऊपर और आधी कंडे के अंदर ऐसे फुगाने के लिए, ऐसे खड़ी गया तो ऐसा फूक गई वो, तो उसको एक माखन का घोड़ा डाला और एक सब्जी बनाई थी फर्स्ट क्लास आलू और गोभी की, और डाली प्रभु जी पाओ, एक गुड़ का टुकड़ा दिया, गाम को मेवा ब्रज को मेवा दिया गुड़ का टुकड़ा, उन्होंने खाओ एक खा के हो गया प्रभु जी और एक खाओ और एक खाओ, चार रोटी खाई पूरा पैक हो गया मैं, इतनी बड़ी रोटी लेकिन इतना प्रेम से खिलाई, और वो मैंने अच्छी तरह से बैठ के चूल्हे के बाजू में बैठ के वो खिलाती रही गरम गरम, मैं खाता रहा और इतना उसके मुख में इतना वात्सल्य प्रेम का आनंद था, देने का आनंद। हाँ कोई ऐसा गिनने रही वो, अरे 10 रुपए की रोटी कही, 4 रोटी वो 40 रुपए हो गए, 2 प्लेट सब्जी दिया उसका 50 रुपए हो गए, ऐसा कुछ गिनती नहीं हो रही है, खाओ और खाओ प्रेम से खाओ, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो महाराज जी कहाँ से हैं, हाँ कोई जानते नहीं थे, कोई पहचान नहीं है, मेरा ऐसा शौक ही है, मैं हमेशा ऐसे घूमते रहता हूँ किधर किधर ब्रजवासियों के घर में जाके हमेशा भिक्षा करता हूँ मैं, बड़ा आनंद आता है मुझे। तो फिर मैं नीचे आया तब तक प्रवचन समाप्त हो गया। अभी ये देखो ऐश्वर्य की बात, लक्ष्मी के होने के बाद देखो आप, तो क्या हुआ सब लोग ऐसे उठे ना, आप जाने लगे बस की ओर, अनाउंसमेंट हो गया इधर से जाओ राइट में जाओ, बस आए 8 बसें खड़ी है वहाँ पर, मुँह करके अपने अपने बस में बैठ जाओ। तो उस समय तक ना उस रास्ते में जितने घर थे वो सबके घर में इतने बड़े मटके, मेरे आधे हाइट के मटके दरवाजे के बाहर रखे, छात से भर के रखे थे, और सब लोग बोल रहे आके छाछ पियो छाछ पियो, हमारे यहाँ पियो हमारे यहाँ पियो, वहाँ गए तो उधर मत जाओ इधर आ जाओ, और ऐसे 7-8 घर के बड़े मटके रखे हैं, सभी 2000 लोगों को पेट भर के छाछ पिलाया उन्होंने, बोलो पूरा फर्स्ट क्लास जीरे का तड़का लगा के मट्ठा बना के खिलाया। आज भी मुझे वो सीन याद है, वो रोटी याद है, वो छत याद है, वो माता याद है, और वो मटके जो घर पे रखे थे उसके सब मुझे याद है आज भी। तो ये सब गांव में हो सकता है और गरीबी आदमी कर सकता है, क्योंकि तो गरीब आदमी दिल का अमीर होता है, और जितना धन इकट्ठा करता है ना आदमी एकदम कंजूस बनते जाता है वो। और मेरे जीवन में मैंने खुद में भी अनुभव किया है, जब मैं स्कूल में था ना हमेशा मेरे बच्चों को फ्रेंड्स को बुलाता था घर में आओ खाना खाओ खाना खाओ, अभी मेहमान आए तो गिनती करता 50 लोगों के तो कितना खर्चा होगा, कितना सब्जी आएगी, कितना ये आएगा, कितना तेल खर्च होगा, इतना मैंने कम में करो, ऐसा करो ऐसा करो, क्यों धन आया ना तो धन अपने साथ कंजूसी भी लेके आता है, उसके लिए प्रयासपूर्वक दानशीलता बनानी पड़ती है। और दानशीलता और दान तू शूरता में अंतर है, दानशूर कौन होता है जो बहुत दान देता है, लेकिन दानशूल व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, दानशील व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जिसको देने की प्रवृत्ति है और देने में आनंद है वो दानशील व्यक्ति है, क्योंकि दानशूर को दान देते समय आनंद होगा इसकी गारंटी नहीं है, उसे टैक्स के लिए देता होगा या प्रेशर होगा इसलिए देता होगा या किसी और कारण से देता होगा कि देना पड़ रहा है लेकिन दिल से नहीं दे रहा है, उसको आप दानशूर कह सकते हैं, बहुत दान दिया उसने, लेकिन उसके ऊपर का स्थिति क्या है दानशील, जो गरीब है आदमी उसके बाद देने के लिए कुछ नहीं फिर भी वो दे रहा है, कुछ ना कुछ दे रहा है, छाछ दे रहा है रोटी दे रहा है। हम सब लोग डॉक्टर लोग थे, हाँ अभी जस्ट पढ़ के पास हो गए थे, तो महाराज जी हमको वृंदावन ले गए थे, उस समय कहते ओमनी ना ओमनी मारुति ओमनी, दो ओमनी हमने किया था और उसमें हम लोग 11 लोग थे खाली, हमारी पत्नियाँ जस्ट मैरिड और कुछ बैचलर डॉक्टर्स कुछ मैरिड डॉक्टर ऐसे थे और महाराज भी थे उसके अंदर, फोटोग्राफी यात्रा की हमने उनके साथ। तो वो यात्रा कैसी थी मालूम है, नो अरेंजमेंट ऑफ लंच प्रसाद, नो ब्रेकफास्ट प्रसाद, नो डिनर प्रसाद, दैट इज द यात्रा, आना है तो आओ, उधर उधर कुछ व्यवस्था नहीं है, मिलेगा तो खाना नहीं मिला तो हरी बोल, ऐसी यात्रा हुआ करती थी। और हमको मैं मेरा नाम ही रखा था उन्होंने रुकोदर, मैं तो क्या कहूँ आपको, जब से आया हूँ भक्ति में सब लोग जानते थे कि दो दो प्लेट प्रसाद खाने वाला विश्वरूप दास, तो मुझे वो जल्दी भूख लगती थी, पित्त प्रकृति ऊपर से घूम रहे दिन भर, तो मैं हमेशा महाराज को बोलता था, महाराज फिर अभी प्रसाद पाले क्या, तुम्हारी भी व्यवस्था नहीं है। तो एक बार लोग अक्षय वट में गए थे, अक्षय वट वृंदावन बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पर कृष्ण भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ बैठकर भोजन करते थे, गोल बैठकर। अभी अक्षय वट पहुंचे तो दोपहर के डेढ़ बज गए थे और पेट में तो चूहे दौड़ रहे थे बहुत जोरदार। महाराज को, महाराज बहुत भूख लग रही है, कुछ को कुछ सोना चाहिए। महाराज का कोई व्यवस्था तो नहीं है? मैंने कहा आगे कुछ मिट्टी के घर दिख रहे हैं, हम लोग जाके वहाँ मांगे क्या? हाँ महाराज जाओ मांगो। तो मैं, ब्रजेश्वरी, द्वारकाधीश, विशाखा, गिरिराज प्रभु, उसकी पत्नी उसमें नहीं थी, ऐसे सब लोग हम लोग गए। और क्या बताऊँ आपको, मट्टी के दीवार के घर थे, पक्के भी नहीं थे, ईंट का भी नहीं था, मट्टी मतलब एक्चुअल मट्टी। वो घर पे गए तो पहले बेटा पहले छाछ पियो, ऐसे बताया, सबको छाछ पिलाया। और बोले 2 मिनट रुको अभी बनते हैं रोटी। अरे हर एक घर में थप्पी थप्पी लोग रोटी सबको दिया उन्होंने, और सब्जी भी फटफट बन बना के दिया, अचार भी रखा उसमें, हाथ में ऐसा डाल के दिया। हम लोग ऐसा थप्पी लेके अक्षय वट के नीचे आ गए, महाराज वहाँ बैठे थे, सबने अपनी अपनी भिक्षा इकट्ठा की, महाराज ने सबको बांटी और सब लोग ने अपने हाथ में ही प्लेट बना के उसको खाया। सबसे ऑपुलेंट फूड था वो। हम लोग यहाँ पर आला कार्टा बनाया है। वो कुछ नहीं है उसके सामने, इतना प्रेम और इतना स्पॉन्टेनिटी, इतनी तत्परता। हाँ तो ऐश्वर्य हृदय का होना चाहिए, बाकी सब ऐश्वर्य होने से क्या लाभ है? तिजोरी में बंद है, म्यूचुअल फंड में लॉक्ड है, इधर इन्वेस्टेड है, इधर FD में, बैंक में बंद है, क्या फायदा है उस धन का जो तो किसी के काम ना आ जाए? तैसा ऐश्वर्य ब्रज में बहुत प्रचुर मात्रा में है। तो लक्ष्मी का निवास, मैंने क्या बताया, श्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही, ऐसे वृंदावन धाम है जहाँ पर लक्ष्मी ने आपके, यानी गोपिया कह रही है कृष्ण को, कह रही है कि आपके यहाँ जन्म लेने से ये धाम इतना गौरवशाली हो गया है कि लक्ष्मी ने यहाँ पर निरंतर अपना निवास स्थान बना लिया उसको। लेकिन फिर भी देखो, और एक आगे श्लोक आता है, 10वें स्कंद में 5वां श्लोक आता है, 5वें अध्याय में, हरेर निवास आत्मगुणय रमा क्रीडम भू नृपः। मतलब क्या कि ब्रज ये रमा की, यानी लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली है, जो भी दिख रहा है ना आपको उसमें जो प्रोविजन है, प्रोविजन मतलब आगे भगवान लीला कर रहे हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड सिचुएशन है ना उसके लिए धन चाहिए ना। अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इसको भी धन चाहिए ना, अभी साउंड सिस्टम चाहिए, लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, माइक्रोफोन चाहिए, बैठने का इंतजाम चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेक्चर तो हो रहा है सामने से, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में सपोर्ट चाहिए ना, वो सपोर्ट लक्ष्मी देवी का है। तो कैसे है कि हरि यहाँ पर नित्य निवास करते हैं, हरेर निवास आत्मगुणे, नित्य यहाँ पर निवास करते हैं। और वृंदावन नाम साक्षात कृष्ण का शरीर है, आगे भी लिखा है देखो, पंचम योजनम एवास्ति वनमे देह रूपकम। ये जो वृंदावन है ये मेरा देह है, ऐसा भगवान ने कहा है। किसमें कहा है? बृहद गौतमीय तंत्र में कहा है। कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि ये 5 योजन का, पंचम योजनम 20 कोस का ये वृंदावन मेरा देह है। और इसमें गुण कैसा है कि ये रमा की क्रीड़ा स्थली क्यों बनी हुई है? क्योंकि रमा कृष्ण को बहुत चाहती है, कृष्ण यहाँ सदैव निवास करते हैं, ये साक्षात वृंदावन कृष्ण का देह है और कृष्ण यहाँ पर अपने सारे गुणों को प्रकट करते हैं, इसलिए लक्ष्मी यहाँ पर बड़े प्रेम से रहती है। आगे क्या लिखा है? हर एक कण वृंदावन का राधा कृष्ण के चरण स्पर्श से बहुत पुनीत हो गया है। हर एक कण चिंतामणि बना हुआ है और इसका प्रूफ कैसा है कि इतना पुनीत हो गया, इतना पुनीत हो गया है कि कृष्ण ने बछड़े बनकर वृंदावन धाम के हर कण के घास खाते हुए हर रज कण को खाया है। ये मत समझना कि भगवान ने एक बार माटी खाई ब्रह्मांड घाट पे, यशोदा के मुंह में ब्रह्मांड दिखाया, एक बार नहीं खाया। जब ब्रह्मा जी ने सब बछड़े चुराए ना तो सारे बछड़े कृष्ण स्वयं बने, तो सभी गायों को मतलब कृष्ण की माता बनने का भाग्य दिया, क्योंकि सभी गाय भी सोचती थी कि कृष्ण हमारा बालक बनेगा तो हम उसको दूध पिलाएंगे, तो सब बछड़े कृष्ण बने और जाके गायों को दूध पिलाने का आनंद दिया। लेकिन उतना ही नहीं किया उन्होंने, ब्रज के हर कोने में हर कण पे जो घास है उसको खाने के लिए उन्होंने हर भूमि को, हर कण को चाटा उन्होंने और हर रजक कण को प्राप्त किया। इसलिए वृंदावन धाम की जो रज कण है वो एक तरह से कृष्ण का महाप्रसाद है, कृष्ण की उसको चाटा है उसको। अभी मैंने कहा कि लक्ष्मी देवी वहाँ निवास करती हैं, और कौन कौन निवास करता है बताओ वृंदावन धाम में? राधा कृष्ण गोपी गोपियां ब्रजवासी के अलावा कौन निवास करता है, कौन सी देवता निवास करती है बताओ? शिव जी निवास करते हैं और पार्वती निवास करती है, लेकिन और किसी को एंट्री नहीं है उधर। सभी देवताओं को बताया ना मैंने आपको, सब जूता ब्रज के बाहर निकालना है। जो जो आपका ऊंट है, भैंसा है, और किसी का मोर है, किसी का कौआ है, किसी का चूहा है, सब जो व्हीकल है वो बाहर रखना है ब्रज के, सब बाहर छोड़ना है, चप्पल भी बाहर निकालना है, नंगे पर अंदर आना है, दिन दिन में आना है, रात को रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं है वहां पर, दिन में रहना है, दिन में मिलना मिलना जो करना है करो। जैसे कि अभिषेक करने के लिए आए थे ना, वर्षा हुई थी तो पश्चाताप हुआ, फिर माफी मांगने आए थे, दिन में आए थे, रात को नहीं आए थे, वो दिन में ही आए थे, दिन में से अभिषेक किया उधर से हरि बोल, रात को नो स्टे अरेंजमेंट्स, किसी देवता को प्रवेश नहीं है, कुछ गिने चिने लोगों को प्रवेश है, उसमें शिव पार्वती है। उसकी एक लंबी कहानी है, ऐसा है कि शिव जी ने और पार्वती ने मिलकर एक त्रैमासिक व्रत किया था, जिसका ब्रह्म वैवर्त में वर्णन आता है। हर हफ्ते में एक फिक्स नंबर 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, उसका नाम क्या है बताइए? सौगंधिका। उस कमल का नाम है सौगंधिका। वही फूल ना उड़ते उड़ते आया था एक बार हिमालय में वनवास में, और द्रौपदी ने देखा था और भीम से कहा था जाओ ये ऐसा फूल कहाँ मिलता है देख के आओ, तो वो लेने गए थे, तो उनके रास्ते में हनुमान जी से मुलाकात हुआ था। और वो सौगंधिका फूल कहाँ से आया था? मानस सरोवर से आया था। मान सरोवर तो वृंदावन है, मानस सरोवर कैलाश मान सरोवर, वहां से वो आया था। तो वो क्या जगह है? वो पार्वती जी का सरोवर है और शिव जी के जो गण है उनके द्वारा संरक्षित है, उनके मदद से उसको मेंटेन किया था उसने। और हर ब्रह्म वैवर्त तो पूरा डिटेल वर्णन दिया है कि हर हफ्ते में कितने उतने कमल अर्पण करने हैं, मतलब उस हफ्ते में हर दिन इतने नंबर कमल अर्पण करने हैं पूजा में, अगले हफ्ते में नंबर बढ़ जाएगा तो उतने हर दिन में करना है, ऐसे त्रैमासिक, मतलब कितने हफ्ते हो गए उसके बताओ? 8 हफ्ते हो गए, 12 हफ्ते हो गए, 12 हफ्ते में 7-7 दिन में अलग नंबर का दिन है, तो कितने हजारों कमल उतने होने चाहिए ना वहां पर, रेडी होने चाहिए ना, उतने कमल खिलने चाहिए, कुछ कली रूप में है, कुछ नहीं खिले हुए तो कैसे फायदा है उसका। तो वो उतने नंबर का गणित करके उसने गणों के साथ में उसको मेंटेन किया था, और ऐसा पार्वती जी ने बहुत ही मेटिकुलस शंकर जी के साथ त्रैमासिक व्रत किया राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और वो प्रसन्न हो गए तो राधा कृष्ण ने दोनों को दर्शन दिया कैलाश मानसरोवर में, और उनको वरदान दिया कि आप मेरे ब्रज में रहो, जहाँ मर्जी वहाँ रहो। तो बताइए शंकर जी कहाँ नहीं है बताओ, कितने कितनी कथाएं हैं उनकी। गोपी बनकर रास मंडल पे आए तो गोपेश्वर महादेव बन गए, मथुरा में कंस के पूजनीय भूतेश्वर महादेव, उन्होंने कृष्ण को मारने के लिए भूतेश्वर महादेव की पूजा की थी वो मथुरा में, गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव के रूप में, जहाँ चक्र ने स्थान प्राप्त किया था। बताए आपको चक्र कहाँ से पैदा हो गए? चक्र को भी भगवान ने वृंदावन में स्थान दिया ब्रज में। जब ही भगवान ने इंद्र ने वर्षा शुरू किया ना, तो भगवान ने उसको उठाया गोवर्धन पर्वत को। तो आप जब छतरी उठाते तो क्या होता है, आपके ऊपर वर्षा नहीं आती है लेकिन छतरी से नीचे गिरती है ना नक्शा। बॉम्बे में कैसा होता है पता है आपको? लोग इतने पर पानी में चल रहे हैं और सर पर छतरी पकड़ के चल रहे हैं, एक हाथ से दूसरे लोगों को हाथ पकड़ के चेन बना के चल रहे हैं, सब लोग छतरी पकड़ के चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं बारिश से बच रहे हैं, लेकिन जो बारिश से जो पानी गिर रहा है वो जो निचरा नहीं हो रहा है उसका, वो जमा हो रहा है, वो यहाँ तक ऊपर तक आ रहा है और लोग उसमें भी चल रहे हैं। तो वैसे होने की संभावना थी कि नहीं बताओ? वो तो बॉम्बे की बारिश नहीं थी, वो तो प्रलय काल की बारिश थी। तो पहाड़ से गिरेगा तो नीचे से पानी ऊपर आएगा कि नहीं? तो आप बोलेंगे अरे कृष्ण भगवान पहाड़ तो तुमने उठाया लेकिन नीचे का पानी का क्या करें? तो भगवान ने कहा कि ऐसा मैं लीला रचाऊंगा ना, एक बूंद जमीन पर गिरना नहीं चाहिए, भले वो समर्थक बादल प्रलय के वर्षा कर रहे हैं, एक बूंद नीचे उतरने दूंगा नहीं। क्या किया? सुदर्शन चक्र को बुलाया, बोले तुम गोवर्धन के इर्द गिर्द ऐसे घूमो, इतने स्पीड से घूमो कि जो मूसलधार, मूसल कैसे माना मैं आपको, मूसल नामे देखा है, मूसल से मसाला कूटते ना, वो मूसल इतना बड़ा होता है, आपने वो परी पुरानी व्यायामशाला कभी गए होंगे ना अखाड़े में, तो होता है मुद्गल, मालूम है मुद्गल ऐसे घुमाते हैं पहलवान लोग, वो मुद्गल मतलब वो मूसल है एक्चुअली, इतना एक बूंद हुआ करता था उसका इंद्र का, और वैसे मूसलधार वर्षा बह रही थी, आ रही थी आकाश से। तो चक्र को आदेश दिया कि ऐसे घूमो कि एक भी मूसलधार बूंद जो है वो जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए, ऊपर ऊपर ही बाष्प होके जानी चाहिए, रिटर्न विद थैंक्स। तो 7 दिन रात 7 रात गोवर्धन के नीचे एक भी बूंद क्यों नहीं गिरा? क्योंकि चक्र ने 7 दिन 7 रात वहां पर मंडराए वो गोवर्धन के इर्द गिर्द। तो जब वर्षा बादल के पानी खत्म हो गया तो बादल वापस चले गए, इंद्र को इन्फॉर्म किया कि सॉरी सर वी आर एम्प्टी नाउ, मतलब मैं आता हूँ अभी वज्र लेके आता हूँ, मैं जाके तोड़ देता सबको। तो वज्र भी बेकार चला गया, वज्र का कुछ परिणाम नहीं हुआ। फिर इंद्र को समझ में आया कि मेरे वज्र को काटने की शक्ति केवल परम भगवान में है, इसका मतलब ये 7 साल का बालक जो है वो बालक नहीं है, वो भगवान है। तो उसको बुद्धि हुई, उस समय बुद्धि में प्रकाश गिरा, तो वो दौड़ के आया। तो ये सब लीला समाप्त हुई, भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा, सब बाहर गए अपने अपने। तो चक्र भगवान जो थे सुदर्शन चक्र, वो भगवान से मिलने आए, बोले मुझे भी यहीं स्थान दो क्योंकि यहाँ पर आपने मुझे इतनी सुंदर लीला में इतना सुंदर सेवा दिया। हु वॉन्ट्स टू मिस द प्लेस वेर यू सर्व द लॉर्ड, इट्स लाइक ए मॉन्यूमेंटल प्लेस, है ना। आपने मुझे इस स्थान पर सेवा दी तो मुझे यहाँ पर रहने की इच्छा है। तो भगवान ने वहाँ पर गोवर्धन के बीच में उनको जगह दी रहने की, तो उसका नाम क्या है? चक्र तीर्थ। वो चक्र वहाँ पर निवास करते हैं आज भी, और उस चक्र तीर्थ के अंदर शंकर भगवान भी रहते हैं, उनका नाम क्या है? चक्रेश्वर महादेव। तो गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव हो गए, और आगे जाकर नंदगांव में दो है, एक तो पर्वत बने हुए जिस पर भगवान विराजते हैं क्योंकि शिवजी ने भी तपस्या की है, और भगवान से बोला कि आपके और ग्वाल बालों के चरणों की रज चाहिए मुझे। भगवान ने बढ़िया है, आप नंदगांव में पर्वत बन जाओ, हम आपके ऊपर घर बनाएंगे अपना, वही नाच करेंगे। तो सभी ग्वाल बालों का कृष्ण बलराम का चरण धूलि उनको प्राप्त हो गया, उसका नाम क्या है? नंदीश्वर पर्वत। और एक है आशेश्वर महादेव, तो कैलाश से उनका दर्शन करने आए थे, बाल रूप का दर्शन नहीं दिया तो एक वन में जाके रोए, आशेश्वर वन में। तो वहां पर के महादेव का नाम है आशेश्वर महादेव, ऐसा है। आगे काम्य वन में एक शंकर भगवान है, उनका नाम क्या है? कामेश्वर महादेव। वृषभानु महाराज काम्य वन में जाकर इस शिव जी की पूजा करते थे कि उनको संतान प्राप्ति हो, वो है कामेश्वर महादेव। उधर एक मन कामेश्वर महादेव भी है, उधर एक पंच कामेश्वर महादेव भी है। एक महादेव ऐसे है कि उनके 5 मुख है, जैसे पशुपतिनाथ के 5 मुख है ना, वैसे एक शिवजी वहाँ पर भी है। इतने फेमस नहीं है, एक छोटे सी जगह पर है लेकिन बहुत सुंदर है। और एक मन कामेश्वर है, बहुत बड़े है। और एक मेन कामेश्वर भगवान है, और जगह जगह शिवजी है। एक चिंताहरण महादेव है मथुरा में, जो हमेशा चिंता होती थी ना कृष्ण के विषय में, तो लोग उस शिवजी को प्रार्थना करते थे, चिंताहरण महादेव। और वही चिंताहरण महादेव आशेश्वर महादेव नंदगांव में बैठ आकर बैठे हुए हैं। और एक है ब्रजेश्वर महादेव, जो बरसाने के प्राचीन जो वज्रनाभ ने उनको स्थापित किया था, वो क्या है? वो वृषभानु महाराज के तपस्थली है, वहां पर उन्होंने तप किया था। तो शंकर जी भी ऐसे ना कि वहां पर पाड़र वन है, राबड़ वन है, और बहुत सुंदर स्थान है वो। वहाँ पर शिव जी को साथ में बैठकर वृषभानु महाराज ने तप किया था, तो वहीं पर शिव जी अभी भी हैं। और एक बार वो आया किसान जिसका खेत में है वो, तो एक बार उसको पता नहीं था जमीन, शिव जी का कैसा होता है ना, हमेशा जमीन लेवल के नीचे उनका स्थान। देखो आप कभी भी शिव जी के मंदिर में उतर के जाते हैं हम लोग, है ना, देखो याद करो आप, अभी हमेशा शहर में हो गांव में हो, शिव जी का मंदिर जमीन के लेवल के नीचे होता है। क्यों होता है मुझे पता नहीं है लेकिन नीचे होता है। तो ये भी उस समय नीचे था, तो बाद में खेती हो गई तो खेती शुरू हो गई। तो एक बार वो खेत जोत रहे थे किसान, तो हर बार एक एंड में आते थे तो उनका वो जो डांगर था ना, वो क्या क्या हल कहता है, हल, वो हमेशा वहाँ पर अटकता था। तो एक दो बार देखा वापस अटका, फिर अटका, फिर अटका, फिर खोद के देखा तो शिवलिंग मिला। तो उनको लगा भी खेत में कौन देखने को आएगा शिवलिंग को, तो उसको हम लोग निकालेंगे और किसी अच्छी जगह पर मंदिर में रखेंगे तो लोग देखने को आएंगे उसको। तो उसने वो दिन खेत जोतना छोड़ दिया और दिन भर वो खोदने का प्रयास किया, लेकिन उसका एंड ही नहीं मिल रहा था जमीन के अंदर। तो सूर्यास्त हो गया तो बंद कर दिया, बोला कल खोदेंगे अभी, और सो गया। रात को शिवजी स्वप्नों में आए और बोले पाताल तक भी खोदोगे ना तो मेरा अंत नहीं मिलेगा तुमको। बोला ऐसा क्यों? बोलते मैं ब्रजेश्वर महादेव हूँ, ये स्थान पे वृषभानु महाराज ने मेरे सामने तप किया था, तो मेरे लिए यादगार है ना कि ये मेरी लीला में प्रवेश मिला मुझे, इसे वृषभानु महाराज के लीला में मुझे प्रवेश मिला है, तो मैं इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता। मैंने कैसे बताया आपको उधर? तो फिर वो कहा मुझे इधर ही बसा लो। तो आज भी ब्रजेश्वर महादेव का मंदिर उधर ही है, खेत के अंदर थोड़ा सा मंदिर बना के खेत के बीच में मंदिर बनाया है, हम लोग वहाँ जाते दर्शन करने के लिए। ऐसे ब्रज में बहुत प्राचीन प्राचीन शिव जी के मंदिर है, हर एक के अंदर पीछे भी लीला है, बहुत सुंदर सुंदर। और गणेश जी को ब्रज में भगवान ने निवास दिया है। कहाँ दिया है पता है किसी को? एनीबडी नोस? गणेश भगवान वृंदावन में परमानेंटली कहाँ रहते हैं? काम्य वन में रहते हैं। क्योंकि काम्य वन में क्यों रहते हैं, उसका कारण है क्योंकि उस समय बलि महाराज राजा थे, दैत्यों के राजा, सत्ययुग की बात है। सो बलि महाराज तो शुक्राचार्य की सेवा करके इतने पावरफुल हो गए थे, तो एक बार तेजस्वी बनकर आए, देवताओं पर आक्रमण किया, उनका तेज देखकर सब देवता लोग भाग गए, ऐसे कई बार वर्णन आया है। वो इतनी ब्राह्मण सेवा करते थे कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके इतना तेज लेकर आते थे कि देवता लोग उनका तेज को देखकर भागते थे। तो ऐसे बलि महाराज वगैरह आए, शुक्राचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करके देवताओं पर आक्रमण किया, देवता देखकर भाग गए और भाग के सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। बोले तो बहुत पावरफुल बनते जा रहे हैं, दिन ब दिन हम जब भी खड़ा रहने का प्रयास करते तो हम लोग भाग ही जाते हैं उनको देखकर। तो कहते हैं उस बार अभी गणेश जी के पास जाओ और उनका पूजन करो, स्तवन करो और उनको विनती करो कि आप हमारे सेनापति बनो। तो गणेश जी के पास गए और उनका पूजन किया है, उनको प्रसन्न किया है, उनको निवेदन किया है कि आप हमारे सेनापति बनो, ऐसे ऐसे बलि महाराज के ऊपर हमको आक्रमण करना है। तो गणेश जी सेनापति बने और उनके सेनापत्य में बलि महाराज को आह्वान दिया, उन्होंने चैलेंज किया। बलि महाराज को आश्चर्य हो गया, अरे कल तो भाग गए थे, अभी वापस कैसे आ गए? कोई बात नहीं, मैं डरता नहीं उनसे। तो उनका घनघोर युद्ध हुआ। कहाँ पर हुआ? काम्य वन में घनघोर देवताओं का बलि महाराज का युद्ध हुआ। और उस युद्ध में गणेश जी ने ऐसा पराक्रम किया कि न केवल बलि महाराज को, सारे सैनिकों को बेहोश कर दिया, बलि महाराज को भी बेहोश कर दिया और बाकी जितने भी होश में थे सब भाग गए, इतना पराक्रम देखकर। और कहते बलि महाराज जब होश में आए तो वो भी भाग गए, इतना पराक्रम करके देवताओं का विजयी बनाया। तो काम्य वन में एक भगवान विष्णु का रूप है, चतुर्भुज विष्णु, जिसका विरजा के साथ विवाह हुआ था। बहुत बड़ी लंबी कहानी है काम्य वन की। बहुत लंबे सिंहासन पर उनको बिठाकर उनके चरणों को ब्रह्मा ने धोया था। तो एक चरणामृत कुंड भी है जो भगवान के चरण से बना हुआ जल, वहाँ पर बिल्कुल मंदिर के पीछे, और वहीं पर राधा गोविंद मंदिर है आज, जहाँ राधा गोविंद जी विराजमान है। वो चतुर्भुज विष्णु और विरजा देवी के विवाह स्थली है, विवाह की वेदी है वो एक्चुअली, वहाँ बिठा कर उनका अभिषेक किया गया था और विवाह किया गया था। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, तो वो चतुर्भुज विष्णु और विरजा देवी वहाँ प्रकट हो गए और उन्हें गणेश जी को आशीर्वाद दिया, उन्हें कहा कि आप यहीं रहो, परमानेंट आपको निवास देते हैं। ऐसे ही केवल गिने चुने लोगों को वहाँ पर निवास प्राप्त है। गणेश जी काम्य वन में, पार्वती शंकर जी सब जगह पे, हनुमान जी सब जगह पे, चक्र भगवान गोवर्धन के बीच में, और कौन बचता है जो वहाँ रहते हैं? हाँ कौन? शनिदेव को आश्रय दिया है कोकिला वन में। शनिदेव भगवान कृष्ण के बड़े ही शुद्ध भक्त हैं। सूर्यदेव के टोटल 10 पुत्र पुत्रियाँ हैं, 4 पुत्रियाँ 6 पुत्र हैं उनके, उसमें से एक है शनिदेव। जन्म से ही भगवान के प्योर डिवोटी हैं, इसलिए वैष्णव जन शनिदेव को ऐसे एक त्रास के रूप में देखते नहीं हैं। हम सबको अगर शनिदेव के त्रास से बचना है तो सब लोग शनिदेव को पहले वैष्णव के रूप में देखो और वैष्णव के रूप में सम्मान करो उनका। तो शनिदेव का जो शनि रूप है ना, शनिता जो है वो आपके लिए थोड़ी कम तो हो सकती है, समाप्ति भी हो सकती है। तो उनको, उन्होंने वहाँ पर कोकिला वन में निवास प्राप्त किया है, वहाँ पर कृष्ण का भजन करते हैं। और आज अभी लोग ऐसे है ना कि वो कोकिला वन तो भगवान की रासस्थली है, क्या क्या नहीं हुआ है, भगवान ने वहाँ पर कोकिला बन के नृत्य किया है, कोकिला बन के आवाज़ किया है, और राधा रानी को देखने गई है और राधा रानी कोकिला बनी है, वो कोकिल कोकिल का मिलन हुआ है, रास हुआ है, जब भगवान ने गुप्त रूप में विवाह किया था तो वहाँ पर जाकर अकेले एकांत निमृत निकुंज लीला किया था वहाँ पर। तो अभी सब लोग वो सब कुछ भूल गए, अभी कोकिला बन को जानते हैं कि शनिदेव का जगह है और शनिदेव का एरिया ज़्यादा डेवलप हो गया है, रोड वोड बन के पूरा चारों तरफ से तिल तेल देने का व्यवस्था बहुत सुंदर है। लेकिन वहाँ पर एक रत्नाकर कुंड है, लोग भूल गए उसको पूरा। वो कुंड कैसा है, समुद्र देवता को भगवान ने वहाँ प्रकट किया और आदेश दिया कि रत्न पैदा करो, हमको चाहिए। तो समुद्र वहाँ प्रकट हो गए, रत्नाकर यानी समुद्र। और उस समुद्र ने वहाँ पर कोकिला वन में लीला करने के लिए सभी गोपियों को रत्न दिए, इसलिए उसका नाम है रत्नाकर कुंड। बिल्कुल शनि के सामने, लेकिन कोई देखता भी नहीं उधर, क्योंकि सबका ध्यान शनि के ऊपर है, किसको पता नहीं वो क्या है बाजू में। इधर जाएंगे तो कोकिला वन है, पूरा राक्षसली लीला स्थली सब वहाँ पर है, पर सबका फोकस किधर है, शनि की ओर है। ऐसा दुर्भाग्य होता है, सबसे बड़ा धन प्राप्त है, लेकिन अभी हम लोग शनि के प्रभाव से मुक्त होने के लिए वहाँ पर तेल दे रहे हैं, तो हमको जाना चाहिए, तेल हम भी देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के परम भक्त है इसलिए उनको तेल देते हैं। ये नहीं कि हमारा शनि का साढ़े साथी और शनि माँ दशा, इसको जरा दूर करो, कष्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमने कर्म किया है उसी को फल दे रहे हैं, वो अपना तरफ से कुछ नया कष्ट नहीं दे रहे हैं, जो तुम्हारे अकाउंट में है उतना ही दे रहे हो, ना कम दे रहे हैं ज़्यादा दे रहे हैं। और हम लोग शनि को प्रार्थना करें कम करो, अरे वो क्या करेंगे, वो तो क्या कहते हैं उसको, ड्यूटी बाउंड है, वो कर्तव्य बद्ध है, हमने जो किया है उतना तो उनको देना है, वो एजेंसी है, वो एजेंसी को क्या बोलेंगे आप, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया उतना करेंगे वो काम। तो इसलिए मैनिपुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लेता है उसको कृष्ण ग्रह की बाधा होती है। वो प्रहलाद जी के बारे में कहा था ना कि इसको कृष्ण ग्रह की बाधा हो गई, इसलिए पागल हो गया लड़का, ये कृष्ण ग्रह की बाधा हो गई है। और जो कृष्ण ग्रह की बाधा हो गई है तो नवग्रह कुछ नहीं कर सकते। देवता भी कुछ नहीं कर सकते, नवग्रह भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण ग्रह सबके ऊपर हावी हो जाता है। हरे कृष्णा। ठीक है, थोड़ा आगे जल्दी बढ़ते हैं, टाइम कम है, चार लेक्चर हो गए वृंदावन के ऊपर अभी, कोई बात नहीं। तो वृंदावन कई कारण है, उसको वृंदावन नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि अनेक वृंदाएँ हैं, हमको खाली एक वृंदा पता है, लेकिन अनेक वृंदाएँ हैं। एक वृंदा केदार की कन्या थी, एक वृंदा कुशध्वज सॉरी धर्मध्वज की कन्या थी। तो एक केदार की कन्या जो है वो लक्ष्मी का अंश थी, उसने यहाँ पर तप किया था और दुर्वासा मुनि ने उसको हरि मंत्र दिया, तो उसने 60,000 वर्ष तप किया, तब ये वन निर्जन वन था, तो उसको गोलोक की प्राप्ति हुई और राधा रानी के समान स्थान उसको गोलोक में प्राप्त हुआ, उसके नाम से इस भूमि को वृंदावन नाम पड़ा है। केदार राजा की कन्या वृंदा, जिसने दुर्वासा मुनि से हरि मंत्र लेकर 60,000 साल तक इसी वन में तप किया था। दूसरी है धर्मध्वज की कन्या, इसने दुर्वासा को, इसको दुर्वासा का शाप प्राप्त हुआ, तो वो कृष्ण अंश सुदामा का राक्षस रूप जो शंखचूड था ना, उसकी पत्नी बनी। दुर्वासा का अपराध किया, दुर्वासा ने शाप दिया, तो जो सुदामा को शाप मिलकर राक्षस बने थे शंखचूड, उसकी पत्नी बनी ये। और फिर बहुत लंबी कहानी है उसकी, वो कैसे वहाँ पर उसके पातिव्रत की वजह से वो शंखचूड अपराजित हो गया था, देवता लोग तो युद्ध करके करके हार गए कई बार उससे, तो विष्णु गए, फिर विष्णु उसके पास गए और शंखचूड को युद्ध में एंगेज किया और शंखचूड का रूप लेके उसके घर पे गए, उसका पातिव्रत भंग कर दिया, क्योंकि तो पातिव्रत की वजह से वो शंखचूड राक्षस हावी हो गया था। तो पातिव्रत भंग किया तो शिव जी का बाण त्रिशूल उसके गले में घुस गया उस समय, तो उसको भी आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे घुस गया, क्या हुआ पतिव्रत का, मेरे पत्नी का क्या हो गया। तो वो शीश जो लटका हुआ है ना त्रिशूल पे, वो घर पे आया वृंदा को पुकारते हुए, तो वृंदा किसी और शंखचूड के हाथ में बैठी हुई है घर पे, और पति की आवाज़ आकाश से आ रही है, बाहर आके देखते हैं, अरे ये तो मेरे पति हैं, तो ये कौन है। तो जैसे ही वो देखा गुस्से से, तो विष्णु को अपना रूप रखना मुमकिन नहीं था, नामुमकिन हो गया, तो विष्णु अपने मूल रूप में आ गए, तो विष्णु को शाप दे दिया, तुम पत्थर बन जाओ। तो विष्णु ने कहा कि मैं पत्थर बनूंगा, लेकिन तुम पहले पौधा बनना पड़ेगा, फिर मैं पत्थर बनूंगा। तो वो तुलसी बनी और विष्णु जी शालिग्राम शिला बनी, तो वो भी वृंदा के नाम से वृंदावन नाम बनाए। राधा रानी का एक नाम वृंदा देवी है स्वयं, वो भी एक कारण है। और जीव गोस्वामी के अनुसार वृंद यानी समूह, क्या कॉन्ग्रीगेशन, उसको भी वृंद कहते हैं, गोप वृंद गोपी वृंद। तो जीव गोस्वामी के अनुसार गोप समूह, गोपी समूह, गौ समूह, लता वृक्ष समूह, इससे वृंदावन बना है। इसलिए सभी समूहों का पोषण करने वाला ये वृंदावन, ये उसका और एक कारण है। राधा रानी के सहस्त्र नाम में 16 नाम श्रेष्ठ है, उनमें से एक है वृंदा, इसलिए वृंदावन ये राधा रानी की क्रीड़ा स्थली है। और भी एक रहस्य की बात सुनो, जो केदार, ये जो कन्या है ना केदार कन्या, ये और एक वृंदा देवी गोलोक में है जो राधा रानी के परम प्रिय सखी है वृंदा देवी, वो भी पृथ्वी में अवतार हुई है। जब कृष्ण ने अवतार लिया तभी वो भी आई है यहाँ पृथ्वी पर। वो अष्ट सखी में से एक नहीं लेकिन एक स्पेशल सखी है, सभी कृष्ण के जितनी लीलाएं हैं उसका आयोजन करती है वो, ऑर्गेनाइजेशन। तो वो इतनी भगवान की सेवा में रहती है कि उसकी सेवा देखकर राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई और राधा रानी ने अपने हाथ से वृंदा देवी का विवाह वृंदावन में कृष्ण के साथ किया और अपना वृंदावन जो था उनकी क्रीड़ा स्थली थी वो वृंदा देवी को भेंट दे दिया। तब से उसका नाम वृंदावन पड़ा, प्रेम से दिया हुआ। और वृंदावन की महती मैंने पहले भी बताई है, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे न मनः सुखम। तो राधा रानी का ये विशेष स्थान है, इनकी कृपा से ये वृंदावन अवतरित हुआ है, साथ में गोवर्धन यमुना भी अवतरित हुई है। वृंदावनम परित्यजम पादम एकम न गच्छति, इस वृंदावन से क्या महती वृंदावन की है, इसमें से एक भी क्षण कृष्ण यहाँ से बाहर नहीं जाते। वो तो गए थे ना कंस को मारने के लिए, पर कौन गया था वो, आपको पहले दिन बता दिया मैंने उसका रहस्य क्या है। जन्म के समय वासुदेव कृष्ण देवकी नंदन कृष्ण को वसुदेव लेकर आए थे गोकुल में, और वो जो थे यशोदा के गोद में दो बालक का जन्म हुआ था, योग माया और माधुर्य कृष्ण, ओरिजिनल यशोदा नंदन कृष्ण। तो जब वो वसुदेव वहाँ पहुँचे उनको क्या बताया गया था, इसको रखो और लड़के को लेकर आओ। तो उसने रखा तो क्या हुआ, जो रखा वो यशोदा वाले कृष्ण के अंदर विलीन हो गए। तो दो कृष्ण थे वो एक कृष्ण हो गए, मतलब देवकी नंदन कृष्ण वासुदेव कृष्ण यशोदा कृष्ण में विलीन हो गए, ऐश्वर्य कृष्ण माधुर्य कृष्ण में विलीन हो गए। और जब बाहर जाने का समय आया अक्रूर के साथ में तो कौन चले गए, देवकी कृष्ण जो आए थे वसुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण वो बाहर चले गए, ऐश्वर्य को लेकर चले गए। सारे राक्षसों को किसने मारा वृंदावन में, उस वासुदेव कृष्ण ने मारा। माधुर्य कृष्ण तो केवल लीला करते हैं, उसको किसी को मारने की जरूरत नहीं है। तो कृष्ण के अंदर के वासुदेव कृष्ण, ऐश्वर्य कृष्ण, शक्तिशाली कृष्ण जो थे ऐश्वर्यपूर्ण, उन्होंने राक्षसों का वध किया है, पुतना शक्टासुर तृणावर्त आदि राक्षसों का। फिर वो माधुर्य कृष्ण वहां गए, प्रश्न बचता है ना, हमने कहा एक कृष्ण बाहर निकल गए और ब्रज के बाहर चले गए और बाद में कंस को मारा, बाकी सबको लीला किया हस्तिनापुर का, कुरुक्षेत्र का, द्वारका का, तो ये कृष्ण कहाँ गए, किसी को पता है, कहीं तो गए होंगे ना। सभी ब्रजवासियों के हृदय में भाव रूप से उन्होंने प्रवेश किया, पहले बाहर रहते थे बाहर लीला करते थे, इस बार सबके हृदय में प्रवेश किया उन्होंने। तो पहले जितना संघ हुआ करता था उससे भी अति अति उत्कट संग अंदर से कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को दिया, केवल गोपियों को नहीं दिया, सबको दिया। उसको कहते हैं विप्रलंब, बाहर से आंसू बहा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, दिन भर रो रहे हैं और अंदर से अति उत्कट संग का अनुभव ले रहे हैं, ये विप्रलंब का बड़ा अद्भुत किमया है। ओके, और इस धाम के पीछे में आपको मैंने बताया वज्रनाभ ने वन और सर और विग्रह के रूप में धाम को संवारा। और देखिए इसमें एक बहुत सुंदर बात बताई गई है कि अगर आपको यमराज से बचना है तो धाम को संवारने में मदद करो। कहीं भी राधा कुंड का बॉर्डर बन रही है, कभी कभी हमारा वृंदावन बरसाने में अस्पताल बन रहा है ब्रजवासियों की सेवा के लिए, या कोई श्री जी के मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है, या किसी कुंड को मरम्मत हो रही है, मतलब धाम को संवारने के और धाम की सेवा का प्रयोजन में कुछ बन रहा है, उसमें अगर आप सहयोग देते हो तन मन और धन से तो यमराज कभी भी आप पर अटैक नहीं करेगा किसी भी कीमत पर। यमराज के प्रभाव से बचना है तो एनी अटेम्प्ट डिजायर एंड असिस्टेंस इन मेंटेनिंग वृंदावन धाम विल कीप यमराज अवे, नोट दिस पॉइंट। और आपके सबके लिए बहुत सुंदर सुविधा है, आप हमारी आंखों के अस्पताल बन रहा है अभी, बहुत जमीन के ऊपर आ गया, अभी फर्स्ट फ्लोर तक आ गया है, आप उसमें दान दे सकते हैं, परमानेंट स्थान हम लोग रहे या ना रहे लेकिन ब्रजवासियों की आंखों की सेवा वहां पर होती रहेगी, हमारे बच्चे हमारे बच्चों के बच्चे हमारी जनरेशन वहां पर सेवा करने की, ऐसी सुंदर प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं वहां पर। आदि वरा पुराण में क्या लिखा है, वृंदावने च गोविंदम ये पश्यन्ति वसुंधरे नते यमपुरम यान्ति यान्ति पुण्य कृताम गति। जस्ट बाय सीइंग वृंदावन धाम, केवल वृंदावन धाम को देखने से, इस बात को आप हमेशा याद रखना, इतनी गहराई की बातें हैं सब ये, कि वृंदावन में कैसे रहना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, इसका सारा वर्णन शास्त्र में दिया है। तो वृंदावन को आप केवल निहारेंगे प्रेम से तो भी आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। ये मुझे राधानाथ महाराज ने स्वयं बताया है उस फोटोग्राफी यात्रा में, उमनी वाले यात्रा में। हाँ, क्योंकि हम लोग जाते थे रस्ते में ऐसे, तो दोनों तरफ खेत हुआ करते थे, हरे भरे खेत, तो कहते विश्वरूप निहारो इसको, इसको प्रेम से निहारो, इसको प्रेम से निहारने से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो ब्रज में जब बस में बैठते हो ना, तो यहाँ वहाँ का टाइम पास मत करो, सिंगाड़ा मत खाते बैठो, खिड़की के बाहर देखो और अप्रिशिएट करो, इतनी सुंदर ब्यूटी है यहाँ पर, इतना सुंदर वृंदावन धाम की भूमि है, उसको कल निहारते निहारते जाना चाहिए प्रेम से, वहीं पर प्रेम बटोर रहे हम लोग। हाँ, और क्या लिखा है कि वृंदावन को प्रेम से बटोरने से हम लोग यमलोक जाना प्रिवेंट कर सकते हैं। वी विल अवॉइड एंड प्रिवेंट गोइंग टू यमलोक। फिर दसम स्कंद में 21वें अध्याय में 10वें श्लोक में लिखा है कि वृंदावन वैकुंठ से भी अधिक कीर्तिमान है, क्योंकि कृष्ण चरण कमल केवल वृंदावन में भूमि ने अपने अंक में धारण किए। अंक में मतलब गोद में, अंक का मतलब है गोद। वृंदावन की पृथ्वी वसुंधरा ने, हाँ, वसुंधरा देवी ने कृष्ण के चरण कमलों को अपने गोद में धारण करके रखा है। कमल खिलने का और भी कारण है, क्योंकि पृथ्वी अभी इस विचार से आनंदित है कि अभी इसके आगे मेरी छाती जो है इनके दोनों भैया के चरण कमलों से अलंकृत हो जाएगी। माई चेस्ट विल बी डेकोरेटेड बाई दी लोटस फुट प्रिंट्स ऑफ माई बिलवेड लॉर्ड्स कृष्ण एंड बलराम। इसके कण कण में कृष्ण के चरण चिन्ह है और इसके कण कण में नित्य नूतन लीला संपन्न होती रहती है। जहाँ की वृंदावन धाम की अधिष्ठात्री देवता राधा है और यहाँ पर पूजनीय केवल राधा का नाम है। वज्रनाभ का एक छोटी सी कहानी आती है इसमें, कि वज्रनाभ को भगवान ने आदेश दिया कि आप हमारे धाम को सवारो। कौन से सर पे सवारो? वन सर और विग्रह। तो उसके पहले आदेश प्राप्त करने के बाद भी एक जमुना के किनारे के कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर वज्रनाभ ने तप किया है, और जब तप किया है तो उस कल्प वृक्ष की कृपा से वृंदावन धाम का दर्शन हुआ है उसको। अभी उनको दर्शन नहीं हुआ क्या पहले? तो मैंने आपको पहले भी ब्रह्मा जी की कहानी में बताया था, वृंदावन का दर्शन का मतलब क्या है। जब वृंदावन का दर्शन आप करेंगे और आपको हर कण चिंतामणि दिखेगा, हर गाय कामधेनु दिखेगी, हर वृक्ष कल्प वृक्ष दिखेगा, तो ही आपको वृंदावन का दर्शन हो रहे हैं। ब्रह्मा जी आए थे ना चुराने के लिए, कुछ नहीं दिखा उनको। जब नतमस्तक हो गए तो उनको हर कण चिंतामणि, हर वृक्ष कल्प वृक्ष और हर गाय कल्प कामधेनु दिखाई पड़ी। तो वैसे दर्शन उस कल्प वृक्ष की कृपा से वज्रनाभ को हुआ पूरे वृंदावन धाम का। और उसके बाद में जो उन्होंने देखा, उसको देखकर उसकी महती को जाना, उसके बाद में वृंदावन को उस भावना से सवारा। मैंने बताया था ना आपको, प्रभुपाद जी ने वो पर्वत देखे वेस्ट वर्जीनिया के, बोले इसको काटो या मंदिर बनाओ। क्यों बताया ऐसे? क्योंकि उनको सब दर्शन ऑलरेडी हो रहे थे, किधर क्या क्या ऑलरेडी है, खाली प्रकट कराने के लिए वो लोगों को प्रेरित कर रहे थे। वैसे भगवान का धाम तुम पहले आए नहीं थे कभी, वो तो मथुरा द्वारका वासी है ना, पहली बार आए उन्होंने, तो उन्होंने वहां पर बैठ के तप किया और कल्प वृक्ष की कृपा से वृंदावन धाम का दर्शन वज्रनाभ को हुआ। उसके बाद में उन्होंने अपनी सेवा की है, ब्रज धाम को बसाया है। शुकदेव जो है वो वृंदा देवी के, सॉरी राधा रानी के तोता है, राधा रानी के विशेष तोता है वो। उसको राधा कृष्ण ने बताया कि आपको हमारे संग नहीं आना है गोलोक धाम में, वो तो उत्सुक थे कि जा रहे हैं हम भी आते हैं। उन्होंने कहा आपको पीछे रहना है और हमारी कथाओं का गुणगान करना है। ये बात अभी लास्ट बताऊंगा आज की, ये महत्वपूर्ण क्यों है। अभी आप देखिए, जो हमेशा राधा रानी की उंगली पर रहता है तोता, और यहाँ रहकर सब लीलाओं का अवलोकन कर रहे हैं, क्या इंटीमेट बातें हो रही है, क्या इंटीमेट लीला हो रही है, सबका एकदम निकट से दर्शन करने वाला, इतना निकट तो और कोई है नहीं। बंदर भी दूर है, गाय भी दूर है, बाकी सब प्राणी भी दूर है, तो हाथ में बैठा हुआ है और सब अंदर की इंटेंस बातें भी सुन रहे हैं। फिर भी वो क्या बोलते पता है? वो कहते हैं कि आपकी लीलाओं का वर्णन करने के लिए मुझे ये लीलाएं पहले शुद्ध भक्त के मुख से सुननी पड़ेगी। वो ये नहीं कह रहे हैं मुझे क्या जरूरत है, मैं तो देखा है सब कुछ, ऐसे फटफट बता दूंगा सबको। लेकिन देखा भी होगा तो वर्णन करने की शक्ति तब आती है जब एक शुद्ध भक्त के मुख से उस कथाओं को सुनते हैं। इसलिए वो कैलाश गए, पहले शिवजी से सुना, फिर बद्रिकाश्रम गए, फिर व्यासदेव के मुख से सुना, फिर उसके गर्भ में गए, फिर तीसरी बार सुना, फिर चौथी बार पढ़ाई किया व्यासदेव के गुरुकुल में। ये बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। तो चार बार भागवत सुना, तीन बार व्यासदेव से, एक बार सीखा, दो बार सुना, एक बार शंकर के मुख से सुना, तब जाकर सुनाया परीक्षित महाराज को। तो यही शुद्ध भक्त की पहचान है। अरे मैं तो कृष्ण का प्रपोत्र हूं, मुझे क्या जरूरी है, मैंने सुना है सब कुछ, मैं बनाऊंगा वृंदावन को अपने आप, नहीं तब किया बैठ के उधर, और कल्पवृक्ष की कृपा से दर्शन किया और फिर उसको सवारा। अभी लास्ट वृंदावन की जो महिमा है ये कि यहाँ के वृक्ष जो है वो एक तो राधा स्वरूप है, स्वयं राधा रानी है, गोपी स्वरूप भी है, ऋषि मुनि भी वृंदावन के पेड़ बनकर तप कर रहे हैं, और चौथे ये सारे पेड़ कल्पवृक्ष हैं, सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, दिव्य चेतना ग्रहण करते हैं, लीला अवलोकन करते हैं, आने वाले भक्तों को जो चेतना ग्रहण उन्होंने की है वो देते हैं। इसलिए हमारे गुरु जी हमें कहते हैं कि वृंदावन में कभी भी हॉल में कथा मत करना, पेड़ के नीचे बैठ कर कथा करना, क्योंकि पेड़ के अंदर शक्ति होती है वृंदावन के, वो स्थान में कौन सी लीलाएं हो रही है उसको देखते रहते हैं और उन लीलाओं का सार जो है अपनी चेतना में ग्रहण करते हैं, और उनके तले कोई भी आता है उनके आश्रय में या प्रार्थना करने में गले लगाने में कोई आता है तो उनको वो चेतना दे देते हैं। ये वृंदावन के पेड़ की विशेषता है, और ये वृंदावन के नहीं सभी जगह के पेड़ ऐसी शक्ति रखते हैं। इसलिए शहर में जब भी कभी डिस्कोथेक के बाहर पेड़ होता है ना वो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो उनके पोषण के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए गांव में आपको बड़े बड़े फैले हुए बरगद के पेड़ दिखेंगे, पीपल के पेड़ दिखेंगे, तमाल के पेड़ दिखेंगे, कदम के पेड़ दिखेंगे, शहर में सिकड़े हुए मिलेंगे आपको। एनीवेज, सो नारद मुनि एक बार कुसुम सरोवर गए थे, तो अशोक कुसुम वन के अंदर एक अशोक वन है, अशोक के पेड़ है वहाँ पर। तो नारद मुनि ने एक अशोक के वन के नीचे बैठकर तपस्या किया, तो उन्होंने क्या देखा, संध्या का समय हो चुका था और वो तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो वो देख रहे अपने ध्यान में कि उस वन के सारे अशोक वन के जितने पेड़ थे वो गोपी बनकर सज्जत के रास्ते में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ तक कि जिस पेड़ के नीचे बैठे वो भी सज्जत कर गोपी बनकर प्रवेश कर रहे हैं। आँख खुल के देखा तो कोई एक भी पेड़ नहीं, आप सब पेड़ गोपी बनकर रास में भाग रहे हैं, ऐसे वृंदावन के पेड़ हैं। कहीं राधा स्वरूप हैं, कहीं गोपी स्वरूप हैं, कहीं ऋषि स्वरूप हैं, कहीं स्वयं कल्पवृक्ष हैं। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय हो। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।